मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। AFEIS के आज 12 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही फ्रेंड्स विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन युवा साथियों के नाम हैं संगीता सेंगर, हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं, चंचल आप भी हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं और अजय यादव आप उजनी उत्तर प्रदेश से हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे प्रारंभिक परीक्षा 2020 के अभी जो 4 अक्टूबर की हुई है इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आज जो मेरे पास दूसरी घटनाएं हैं इनमें दो घटनाएं बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है स्वामित्व योजना के तहत जो संपत्ति कार्ड हमारे यहां के लोगों को, गांव के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और दूसरा है शांति का नोबल पुरस्कार जो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। तो दोस्तों, मैंने केवल इनका उल्लेख भर यहां किया है क्योंकि इन पर यदि मैं थोड़ी सी भी डिटेल में जाऊंगा तो जो मुख्य विषय है उसके लिए समय नहीं बच पाएगा, तो मैं केवल संकेत में अपनी यह बात आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरी कोशिश होगी कि इन दोनों टॉपिक्स पर मैं जल्दी से जल्दी आने वाले डेली ऑडियो लेक्चर में चर्चा करूं। जहां तक दो और जो घटनाएं हैं कोविड के बारे में, आप देख ही रहे हैं कि स्वस्थ होने की दर लगातार हमारी बढ़ती चली जा रही है, 86% से अब अधिक हो गई है। और आज के अखबारों में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात छपी है वो ये है कि बहुत जल्दी भारत में अब हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। यहां तक प्रेडिक्ट किया गया कि शायद ये नवंबर में हो जाए। दिल्ली में तो लगभग 54% तक हर्ड इम्यूनिटी पहुंच चुकी है। पहले 29% आई थी फर्स्ट सीरो सर्वे में, अब जो दूसरी सीरो सर्वे हुई इसमें 25% आ गई। तो आप यह मत समझिए कि 29% गिर करके 25% हो गए, इन दोनों को मिला दीजिए तो 54% हो जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि एक बार अगर किसी को कोरोना हो गया या कह लीजिए कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो उसको फिर कोरोना नहीं होगा। हाँ, लाखों में एक आध दो को हो सकता है, ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन सामान्यतया यह माना जाता है। और जैसे ही अगर हर्ड इम्यूनिटी हम हासिल कर लेते हैं तो इस महामारी पर हमारा पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि लगातार इसके वैक्सीन की भी बात हो ही रही है, तो मुझे लगता है कि अब डर धीरे धीरे आपके मन में भी अगर है तो वह कम होना चाहिए, लेकिन सावधानी पूरी बरती ही जानी चाहिए, उसमें कोई ढिलाई न हो। एक दूसरी घटना के रूप में फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन जो टेनिस प्रतियोगिता, ग्रैंड स्लम प्रतियोगिता है, आज के अखबारों में पढ़ा, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि स्पेन के जो बहुत ही प्रसिद्ध जो टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, वो इसके चैंपियन बन गए हैं। दूसरे एग्जामिनेशन में भी इस तरह के न्यूज़ पर आधारित ज्ञान कभी कभी परीक्षण कर लिया जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी चर्चा कर दी है। आज मैं प्रारंभिक परीक्षा 2020 की जो अभी आपने दी है इसके बारे में बहुत ही एक अलग तरीके से और एक प्रैक्टिकल बात करने जा रहा हूँ। मेरे इस प्रैक्टिकल बात का संबंध एक बहुत ही छोटे से लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात से है। छोटे से शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि जब आप मेरी बात को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप, ये तो सामान्य सी चीज हो गई, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि इसका इंपैक्ट आपकी प्रिपरेशन पर बहुत जबरदस्त रूप से होगा, मुझे ऐसा लगता है। जबरदस्त रूप से इस आप कह लीजिए कि रूप में होगा कि ये आपको अब जो आप 2021 का प्रिपरेशन करेंगे या उसके बाद आगे भी जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन कर सके, एक अच्छा आपका मेंटर बन सके, मार्गदर्शक बन सके। अभी जब आपने पेपर देखा होगा, चाहे आप एग्जामिनेशन में बैठे हों या ना बैठे हों, नहीं बैठे होंगे तब भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप को पेपर देखना चाहिए, पेपर पढ़ना ही चाहिए और फिर उसके आधार पर अपना मूल्यांकन भी करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि एग्जामिनेशन देने के बाद या नहीं भी अगर आपने दिया है तो भी आप अपना स्व मूल्यांकन लिखें, क्योंकि जब हम सेल्फ इवेल्युएट करते रहते हैं, इवेल्युएशन में होते हैं, तो मान करके चलिए कि हम अपनी गलतियों को पकड़ पाते हैं और जब तक हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, बेहतर रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। सीधी सी बात है कि हम अपनी गलतियों को दोहराते जाएंगे तो उससे प्राप्त होने वाले परिणाम भी हम अपने आप को दोहराते जाएंगे, तो कहां गलती हो रहा है परिणाम में, नहीं, वो भी दोहराते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं सीधे अपनी बात पर, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा एक प्रेजम्पशन है, है ना, एक मैं काल्पनिक आपको डेटा दे रहा हूं, एक सिचुएशन बता रहा हूं, लेकिन काल्पनिक होने के बावजूद ये यथार्थ के बहुत करीब है। और बहुत करीब कह रहा हूं, इसका मतलब है कि 98-99% के करीब है, ये मत सोचिएगा कि थोड़ा मोड़ा करीब है, यह एक प्रकार से काल्पनिक होने के बावजूद सच ही है। और ये मैं एवरेज उनकी बात कर रहा हूं जिनके एग्जामिनेशन में अब सफल होने की संभावना है। जब हम सोचते हैं कि ये सफल हो गया, जब इसने प्री क्वालिफाई कर लिया, ये मेंस क्वालिफाई कर लिया, तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा महसूस होता है जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते उनके दिमाग में, कि यार ये कोई बहुत ही असाधारण व्यक्ति होगा, इसके मेमोरी पावर बहुत अच्छी होगी, ये बहुत ही मेहनत कर रहा होगा, रात दिन पढ़ रहा होगा, पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ी होंगी, इस तरह की ढेर सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं जो स्वाभाविक भी है। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, शायद मैं अब जो आपसे कहने जा रहा हूं उसका ज्ञान आपको हो सके, प्रत्यक्ष ज्ञान हो सके, राइट? तो मैं अपनी बात शुरू करूं। तो दोस्तों, मैं केवल जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं। देखिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए हैं और आपको पेपर मिल गया है, ठीक है, आपके पास 2 घंटे का समय है, 120 मिनट और 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर उसका कौन सा सीरीज मिला था, ए बी सी डी सीरीज होते हैं, और मुझे यह भी नहीं मालूम कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपकी वो क्या है, है ना, आप कॉमर्स के हो सकते हैं, आप साइंस के हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। जैसे मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं और शुरुआत में अगर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पढ़ने को मिल गए तो आप निराश हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको शुरू में ही साइंस के क्वेश्चन मिल गए तो आप उत्साहित हो जाएंगे। आर्ट्स के स्टूडेंट के साथ इसके बिल्कुल विपरीत होगा, अगर आर्ट्स का स्टूडेंट हर शुरू में उसको साइंस के क्वेश्चन पढ़ने को मिल गए तो वो निराश हो जाएगा। तो पहली चुनौती तो ये होती है कि अगर आप अभी भटक रहे हैं जंगल में, अंधेरे में, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, इसकी दूरी थोड़ी सी है, मैं इसे तय कर लूंगा, आगे रास्ता है। यानी कि अपने धैर्य को आपको बनाए रखना होगा, आपने क्या ऐसा किया है आप खुद विचार करें। दोस्तों, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं या सॉल्व कर चुके हैं तो उस तरह का एक डेटा देखिए, मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूं। 100 क्वेश्चन थे, जो मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तब आप इसके आधार पर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, और अगर एग्जामिनेशन नहीं दिया है लेकिन तैयारी थोड़ी सी ठीक ठाक थी और आपने अपना मूल्यांकन किया है तब भी आप इसके आधार पर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन थे और उन 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसे रहे जो पल्ले ही नहीं पड़े, समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूछ क्या रहा है, कहां से पूछ रहा है, ये मान करके चलिए कि वो आपके लिए बिल्कुल अनजान सा है और ये कोई दूसरी भाषा में लिखा गया है, आपके बिल्कुल समझ पकड़ से बाहर, आप उन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिए। 20 क्वेश्चन मैंने निकाल दिए, देखिए 100 में 20 क्वेश्चन तो आप टच ही नहीं कर रहे हैं, और इनके साथ माथामारी भी आपको नहीं करना है, क्योंकि समय जो हमारे पास बचेगा इसको अगर हम छोड़ देंगे तो उसका इस्तेमाल हम दूसरे क्वेश्चन के लिए करेंगे। अब आपके पास 80 क्वेश्चन थे, राइट? अब इन 80 क्वेश्चन में अब आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, 20 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं। अब इन 80 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ऐसे हैं मुझे लगे कि नहीं नहीं, इन पर मैं कोशिश भी करूं, मुझे समझ में तो आ रहा है लेकिन उनके जो विकल्प दिए गए हैं उनमें मैं उलझ गया हूं, वहां मुझे 3 से ज्यादा विकल्प दिखाई दे रहे हैं, या कह लीजिए कि जो ग्रुप बनाए गए हैं उन ग्रुप में मेरी क्लियरिटी नहीं हो रही है, तो 15 क्वेश्चन लगभग मुझे ऐसे लगे तो मैंने उन्हें भी छोड़ दिया, राइट? अब इसमें भी 3 से ज्यादा विकल्प हो सकते हैं, मतलब उसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। तो इस तरीके से जो 35 क्वेश्चन थे उन्हें मैंने टच नहीं किया, 35 क्वेश्चन। यानी कि जब आप अगले साल की तैयारी करेंगे तो आपको यह सोच कर चलना है कि यार कोई बात नहीं, अगर हम इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। अब आपके पास बच गए हैं 65 क्वेश्चन जो आपके अपने कंट्रोल में हैं, जिनके साथ आपकी दोस्ती है। अब आप देखिए कि 65 के साथ आप क्या कर रहे हैं, इसमें से 45 क्वेश्चन आप सही सही बना रहे हैं, 45, इतने क्वेश्चंस पर तो आपकी कमांड होनी ही चाहिए। 40 से 45 कह लीजिए, मतलब आप आसपास कर सकते हैं, 45 क्वेश्चन आपने सही सही किए। तो देखिए अभी भी जो आप सही नहीं कर पा रहे हैं उसमें 20 क्वेश्चन बच गए हैं। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि 65 अब आपके सही होने चाहिए, नहीं, उसमें आपने 45 ही सही किए। आपने अपनी तरफ से तो 45 सही किए हैं लेकिन वो सब सही नहीं हुए, 5 उसमें भी गलत हो गए हैं, ये संभावना रहेगी, मान के चलना है आपको। इसका मतलब है कि आपने 45 क्वेश्चन अपनी तरफ से सही सही किए लेकिन उसमें से सही केवल 40 हुए, इसका मतलब है कि आपको 80 मार्क्स मिल गए। और ये जो 5 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं इसकी माइनस मार्किंग हो जाएगी, हम उस खाते में डाल देते हैं, तो आपका जो स्कोर हो गया वो 80 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब आपके पास 20 क्वेश्चन बचे हैं, 65 आप हल कर रहे हैं ना, उसमें से 45 आपने सॉल्व कर लिए हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने बचे हैं आपके पास? 20 क्वेश्चन बचे। अब इस 20 क्वेश्चन में आप उनको ले रहे हैं जिनके बारे में दो विकल्प पर आपके मन में भ्रम है, कि दो में से कोई एक हो सकता है। 20 क्वेश्चन, तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, विज्ञान के आधार पर बात कर रहा हूं, चूंकि दो विकल्प में एक के सही होने की संभावना, यानी कि 50% संभावना है। तो जो अब आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं ये मान लेता हूं कि इसमें से 10 क्वेश्चन सही होंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो 10 क्वेश्चन सही हो गए तो इसके आपको 20 मार्क्स मिल गए, 80 आपके पहले स्कोर था और 20 ये स्कोर होगा, तो इस तरीके से आपका स्कोर हो गया 100 मार्क्स का। राइट, अब ये जो 100 मार्क्स का तो आपका स्कोर हो गया, लेकिन ये आपका पक्का स्कोर नहीं है, क्योंकि देखिए 5 तो आप पहले गलत कर चुके हैं, 45 क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो उसमें 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं, और अभी हमने 20 क्वेश्चंस में से केवल 10 ही सही माने हैं, मतलब 10 यहां भी गलत हो गए हैं, तो टोटल गलत जो प्रश्न हुए वो हो गए आपके 15, 10 यहां और 5 पहले के। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि चूंकि जो आपके अब 15 क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं, इसमें जो मैंने परसेंटेज के हिसाब से निकाला है, जो गलत आपके होंगे वो हो जाएंगे 10 मार्क्स के करीब, 10 मार्क्स, क्योंकि एक जो पेपर है वो दो का है, दो नंबर का है, और 15 क्वेश्चंस आपके मार्क्स हुए हैं तो 33% निकालेंगे, तो आपके जो कम होंगे मार्क्स वो 10 मार्क्स घट जाएंगे, और इस तरह से आपका जो एग्जैक्ट स्कोर आएगा वो 90 मार्क्स के करीब आएगा, यानी कि 45%। ये बहुत बॉर्डर लाइन है, बहुत ही बॉर्डर लाइन, 45 मार्क्स। दोस्तों ये बहुत ही कंजर्वेटिव कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही कंजर्वेटिव कैलकुलेशन, बुरा से बुरा पेपर बनने की स्थिति पे मैं आपको ये कैलकुलेशन दे रहा हूं। अब आप देखिए कि आप कहां हैं। यहां जो मेरे इसको बताने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो तैयारी करते समय आप अपने दिमाग में रखिए कि कुछ ऐसे मेरे विषय होते हैं जिन पर मेरी कमांड नहीं हो सकती है, तो उन कमांड पर मैं बहुत ज्यादा फोकस न करूं, दूसरे जो मेरे अपने विषय हैं उन पर मैं ज्यादा कमांड करूं, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस छोड़ने की गुंजाइश है, मैं कुछ क्वेश्चंस छोड़ सकता हूं। बस केवल एक छोटी सी बात मुझे ये बतानी थी जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। दोस्तों इस कैलकुलेशन के आधार पर आप देखिए कि 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और अगर देखिए हम इतना भी स्कोर अगर करने की स्थिति में नहीं है तो फिर हमें अपनी प्रिपरेशन के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 3 मित्रों के नाम हैं, सोमदत्त कुल्लू हिमाचल प्रदेश से, सत्यम ठाकुर और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।